بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورۃ الحجرات شروع کریں گے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت سورۃ اور آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 1 سے 10 تک ہے سورۃ حجرات کیا ہے بس میں تو یہ کہتی ہوں پرامن معاشرے کا نسخہ اور پھولوں کا ایک گلدستہ ہے اس صورت میں 18 پوائنٹس ہم دیکھیں گے کہ جن کو اگر عمل میں لے آیا جائے تو مسلمان معاشرہ وجود میں آتا ہے आप कह सकते हैं कि मुसलमानों को एक दूसरे से यूनाइट रखने, एक दूसरे से जुड़े रखने की टिप्स हैं। एल्फी है, आप कोई भी टेप का नाम ले लें जो चीज़ों को जोड़ती है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। और इस सूरत का एक दूसरा नाम सूरतुल अखलाक भी है, यानी कह लीजिए कि ये अखलाक सिखाने वाली सूरत है। सूरत का नाम हुजरात क्यों है? आयत 4 में नबी सल्लम के अज़वाजे मुतहरात के घरों का तस्करा आता है, इन अल्लज़ीन युनादूनक मिन वराइल हुजरात, तो उस लफ्ज़ हुजरात से जहाँ वो हुजरा आएगा वहाँ हम बात करेंगे। ये सूरत मुख्तलिफ औकात पे नाजिल करदा अहकामात का मजमूआ है। अक्सर हुक्म मदीना में नाजिल हुए आखिरी दौर में, ख़ास तौर पे आयत 4 बनी तमीम के बारे में नाजिल होती है, जब किसी वफद के लोगों ने आकर बाहर से आपको पुकारना शुरू कर दिया था। और बस कहते हैं कि ये गिरोह या जो भी ये वफूत है, आमुल वफूत, यानी सन 9 हिजरी में आए। सूरत का अगर आप बुनियादी मजमून देखें तो अदब की तालीम। पहली 5 आयतों में अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में अदब है। फिर उसके बाद हर खबर पे यकीन नहीं कर लेना चाहिए, यानी सुनी सुनाई बात को लेकर दिल खट्टे नहीं करने चाहिए, दिल मैले नहीं करने चाहिए, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, तहकीक कर लेनी चाहिए। फिर अगली बात, अगर किसी वक्त किसी मुसलमानों के गिरोह की दूसरे से लड़ाई हो जाए, यानी जब एक मुसलमान दूसरे से लड़ने लगे, तो खड़े होके तमाशा ना देखो, जलती पे तेल का काम ना करो, बल्कि आपस में सुलह करवा दो। फिर उसके बाद अमूमी तौर पे वो बुराइयाँ जिससे ताल्लुकात बिगड़ते हैं, जिससे इज्तमाई ज़िंदगी में फसाद आता है, मसलन एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ताने देना, बुरे नाम रखना, बदगुमानियाँ पैदा करना, दूसरों के हालात की खोज कुरेद करना, लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयाँ करना, ऐसे तमाम अफ़ाल जो किसी मुआशरे के लिए दीमक से कम नहीं होते, उनका तذکرہ है। और नाम लेकर एक एक को हराम करार दिया गया। फिर इसके बाद 5वीं चीज़ हम इस सूरत में देखेंगे, कौमी और नस्ली इम्तियाजात। नस्ल परस्ती, ज़ात बिरादरी, मैं बड़ी मैं आला, कौमों कबीलों ख़ानदानों का अपने शर्फ और अपने नाम पर फ़ख्र और गुरूर, दूसरों को कमतर समझना, अपने आप को बड़ा करार देना ताकि दूसरों को गिरा सकें। इसी वजह से दुनिया में जुल्म है, इसी वजह से ब्लैक एंड वाइट की टर्म है, इस पे बात है। और आखिर में एक छोटा सा खूबसूरत पैगाम कि ईमान ज़ुबान के दावे का नाम नहीं है। जब तक कॉल फेल और अमल से अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदार नहीं बन जाते, सारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों को मानते हुए नहीं गुजारते, तुम्हारा जन्नत में जाना मुहाल है। आइए आयतों के साथ लेते हैं। और हमारी ये तफसीर सिर्फ एक तस्किया वाली तफसीर है, हम इसमें कोई इल्मी गहराई की बातें नहीं करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हम इस कुरान को इस एंगल से पढ़ रहे हैं कि इसमें हम अपने लिए अमली रहनुमाई कैसे लें। तो आयतों के साथ साथ रहते हुए हल्की हल्की बात और आखिर में फिर पूरे सबक का खुलासा। खोल लीजिए पारे को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीन आमनू। एक बार फिर आपके रब ने आपको पुकारा, क्या कहेंगे इसके जवाब में? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हम में से बहुत सारों ने आखिरी लब्बैक हज या उमरे पे ही पढ़ा था, जब वहां जाकर एहराम बांधकर लब्बैक कहा था। लेकिन वापस आते ही, बल्कि जहाज में बैठते ही, सब कपड़ों की तरह उसको भी लपेट लपाट के रख दिया कि अब जब कभी अगले साल या अगली दफा आएंगे तो फिर एहराम के साथ इसको खोलेंगे। हालांकि एक ईमान वाला सारी जिंदगी अल्लाह के हर हुक्म, उसके हर फैसले, उसकी की हुई रजा तकदीर, उसकी दी हुई शरीयत को सुनकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है। और सहाबा कराम या अय्युहल्लज़ीन आमनू के बाद कहा करते थे कि लोगों गौर से सुनो, तुम्हारे मालिक ने तुमको बड़ी दूर से पुकारा है, बड़ी ऊपर से पुकार आई है। आपकी मेरी जुबान में लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है। जितनी दूर से कॉल आई होती थी पहले दौर में, उतनी घबराहट शुरू हो जाती थी कि वक्त कम है बातें ज़्यादा। आज तो नेट ने सारे मसले हल कर दिए, लेकिन आपके मेरे लिए अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम रखने के लिए ना तो वक्त की ज़रूरत है, ना ज़माने की कैद है। कल भी वो अपने बंदे की पुकार पे जवाब देता था जैसे आज देता है, کہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا سنیں, ایک دم اپنے آپ کو الرٹ کریں, ٹیک چھوڑیں. اگر توجہ ادھر ادھر چلی گئی تھی تو واپس آئیں, کیونکہ کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس سے بات کریں اور وہ کہیں اور دیکھے, فون سے کھیلے, چٹ چٹ کرے, دماغ میں سوچے کل کیا کرنا ہے, یہاں سے جا کے کیا کرنا ہے. تو قرآن سنتے وقت جس طرح ہم ظاہری طور پہ حاضر ہوتے ہیں, کتنی محنت مشقت کے بعد پہنچتے ہیں, اسی طرح دل اور دماغ کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے. چلیے, پہلا ڈونٹ ہے, یہاں ڈوز اینڈ ڈونٹس کا مجموعہ ہے اس صورت میں. تو پہلی چیز, لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ, نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے. دوسرے لفظوں میں, اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. آگے بڑھنا, پیش قدمی کرنا بظاہر تو چال کے اندر ہوتا ہے کہ آپ چل رہے ہیں, کسی کے آگے نہ چلیں. استاد ہے, آپ اس سے آگے نہ چلیں. ماں باپ ہے, ان سے آگے نہ چلیں. جس کی بھی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, اس سے آگے نہ چلیں. لیکن یہاں اللہ اور اس کے رسول سے آگے چلنا, یہ کیا ہے؟ ان کے حکم سے آگے نہ چلیں. کیونکہ اللہ کی ذات, اللہ کی ہستی کوئی ہمارے سامنے ایک وجود کی صورت میں نہیں ہوتی کہ جب وہ سامنے نظر آئے تو ہم اس سے آگے نہ چلیں. اور آج میرے آپ کے لیے تو رسول بھی ایک غیب ہے, ہم ان کو فزیکلی نہیں دیکھ پاتے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کے لیے تو اس ساتھ پہ براہ راست عمل یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہو تو تم ان سے پیچھے رہو. لیکن اب آج میرے آپ کے لیے کیا ہے؟ رسول کی بات سے آگے اپنی بات نہ بڑھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈر جاؤ. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے. یہ ایک آیت تو کیا ہے, مجھے تو لگتا ہے یہ پورا کانسٹیٹیوشن ہے, مسلم کانسٹیٹیوشن. اسلامک لاء کی سب سے بنیادی شق, لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ. اس کو جس نے سمجھ لیا, نہ تو شرک کرے گا, کیونکہ شرک سب سے پہلی قسم ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی. کیسے؟ ہم کہتے ہیں شرک اور توحید میں زمین آسمان کا فرق ہے. کئی لوگوں کے منہ سے میں نے یہ بات سنی درس دیتے ہوئے بھی کہ توحید ایک اور چیز ہے, شرک ایک اور چیز ہے. تو وہ بات غور سے سنیے, پھر لکھیے. توحید اور شرک میں زمین آسمان کا فرق نہیں ہے, بال برابر کا فرق ہے. اور وہ بال کیا ہے؟ سنت رسول. رسول نے جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا اللہ کی ذات کے معاملے میں, وہ توحید ہے. اللہ ایک ہے, اللہ کو پوجو, اللہ کی مانو. اب آپ اس کو اپنی مرضی اور اپنی عقل کے ساتھ گڑنے لگے اور کسی بت کے آگے کھڑے ہو کر وہ سب کچھ کرنے لگے جو اللہ کے نبی نے نہیں کہا, تو آپ مشرک ہیں. بات واضح؟ جب کوئی شخص کسی بت کے آگے کھڑا تپسیا کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس وقت وہ بھی اپنے اینگل سے اوپر والے کو پکار رہا ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے خیال میں اوپر والا اس پتھر کے بت میں اپنا روپ دے رہا ہے. کوئی درخت کے آگے کھڑا ہے, کوئی کسی قبر کے آگے جھک رہا ہے, وہ اس وقت کبھی اس قبر والے پہ نہیں جھکتا. آپ کسی بڑے سے بڑے کافر مشرک کو پوچھ لیجئے, درگاہ پہ کھڑے کسی پیر کی قبر کو سجدہ کرنے والے کو پوچھ لیجئے, کس کو سجدہ کرے, وہ کہے گا اوپر والے کو کر رہا ہوں. لیکن پھر فرق ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو پکارنے کا کیا طریقہ بتایا. نماز پڑھتے ہیں, قیام ہے, پھر ایک رکوع ہے, پھر دو سجدے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں, ایک ایکشنز کا نام نماز ہے. یہ ہے اللہ کے رسول کا سکھایا ہوا طریقہ اللہ کو خوش کرنے کا. آپ کہیں کہ عقل کو استعمال کرتے ہیں, رکوع ایک کی جگہ دو کرتے ہیں, چونکہ سجدے دو ہیں. چلیے, نہیں تو پھر رکوع ایک ہے تو سجدہ بھی ایک ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر نماز میں بیچ میں لیٹ بھی جاتے ہیں, تو یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہوگا. سیدھی سی بات ہے, ایمان کا پہلا تقاضا, دا فرسٹ موسٹ ڈیمینڈ آف آور بیلیف از دیٹ, کہ جب آپ نے اللہ کو رب اور رسول کو ہادی اور رہبر مان لیا, اور اگر آپ اپنے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سچے ہیں, یہ زبان کی نوک نے نہیں کہہ دیا, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपकी अकल और आपके दिल ने भी कह दिए ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर बड़ा बड़ा करके लिखे। कभी अपनी राय, अपने ख्याल को अल्लाह और रसूल के फैसले पर अहमियत नहीं देनी, अपने मामलात में आजादाना राय नहीं देनी, कोई फैसला खुद से नहीं करना। जहां अल्लाह ने कहा करो कर लो, रसूल ने बताया कैसे करो वैसे करो, जहां रोका वहां रुक जाइए। जिन मामलात में अल्लाह और उसके रसूल ने कोई हिदायत दी ही नहीं है, वहां खामोश हो जाइए। ये ना कहो कि आगे और पीछे, यानी दूसरे लफ्जों में कहो कि पीछे चलो आगे ना बढ़ो, मुकद्दम ना बनो ताबे बनकर रहो। सूरत अलअहज़ाब इससे पीछे तरतीब के एतबार से गुजर चुकी है। आयत 36 में हमने एक हुक्म पढ़ा था, यानी जिस मामले का फैसला अल्लाह और इसके रसूल ने कर दिया हो, किसी मोमिन को इख्तियार ही नहीं है कि वो उसमें कुछ मर्जी करे। हजरत ज़ैनब थी, उनके निकाह के मामले में ये बात आई थी। वहां क्या था कि जब अल्लाह ने कोई बात कह दी है और उसके रसूल ने कह दिए, तो फिर तुम उसमें अपने मामलात खुद नहीं कर सकते। यहां उससे भी बढ़ के बात है, एक कदम आगे नहीं जा सकते। और याद रखिए कि ये हुक्म महज इनफरादी नहीं है, इज्तमाई भी है। यानी आप और मैं अपने इंडिविजुअल मैटर्स में हलाल क्या है हराम क्या है अल्लाह और उसके रसूल से पूछेंगे, जायज़ क्या है नाजायज़ क्या है अल्लाह से पूछेंगे, एज अ बीवी मेरी क्या जिम्मेदारी है ये अल्लाह से और उसके रसूल से पूछेंगे, एक माँ होने के नाते मेरे हकूक और जिम्मेदारियाँ क्या हैं अल्लाह से पूछेंगे। इसी तरह यानी वन बाय वन जिस तरह मैं और आप अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक ढालेंगे, इज्तमाई तौर पे भी हम अल्लाह और उसके रसूल ही को मानेंगे। आप जुमला लिख लीजिए, ये कानून है इस्लामी अदालत और पार्लियामेंट का, जहाँ कानून साजी होगी, जहाँ लॉज पास होंगे, जहाँ लोगों पे पाबंदियाँ लगेंगी, जहाँ लोगों को सेंक्शंस मिलेंगी, जहाँ लोगों को रियायतें मिलेंगी, हर चीज़ के पीछे दलील अल्लाह और उसके रसूल की बात होगी। आपके मुसलमान मुल्क में सूद हलाल है कि हराम, ये आपका मेरा फैसला नहीं है। वहाँ नकाब पर्दा करना जायज़ है कि नहीं, आपका मेरा इख्तियार नहीं है। वहाँ शराब बिकेगी कि नहीं बिकेगी, आपका मेरा काम नहीं। वहाँ जमजम के लाने में कोई पाबंदी है कि नहीं, आपका मेरा किसी हुक्मरान का ये फैसला नहीं। हर फैसला उस हुकूमत के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का होगा। यही थी वो मेथडोलॉजी जिस पे पाकिस्तान हासिल किया गया। बरे सगीर पाक व हिंद, जिसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं आप लोग, अगर आप देखें तो उसके अंदर यही तो एक मुश्किल थी। वहाँ तभी तो ज़मीन का एक टुकड़ा मांगा था, वरना क्या कमी थी। वहाँ तो खूब खा पी रहे थे, जॉब्स भी थी और एक्सपोजर भी ज़्यादा था। देखिए ना, आप अपने कमरे में बैठे हो तो आप कितने लोगों को देखेंगे, और आप अगर घर की गली के कोने में बैठे हो तो 10 को देखेंगे। पाकिस्तान को कमरा ले लीजिए, वहाँ आप मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, लेकिन जब आप बरसगीर पाको हिंद में थे, वहाँ गोरे भी थे, काले भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान थे, एक्सपोजर ज़्यादा मिलता। लेकिन जिस चीज़ की बेस पे मुसलमानों ने एक अलग मुल्क हासिल किया, वो क्या थी कि हम बाय लॉज या इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। याद रखिए कि इस्लाम को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक है बाय हुक और एक है बाय क्रुक। जिनको इंग्लिश आती है वो तो समझ गए। एक हकूमतें मजबूर करती हैं ये करो, और एक आपका दिल मजबूर करता है कि मैं तो ये करूंगी। हकूमत कभी किसी को पाबंदियों के जोर पे बात नहीं मनवा सकी आज तक, ना अच्छी ना बुरी। लोगों ने तब माना जब उनके दिल ने माना। मिसालें मौजूद हैं, वक्त नहीं है, इस वक्त जरूरत भी नहीं है। अल्लाह के नबी जिस माशरे में थे, शराब पानी की तरह पी जाती थी, और एडिक्शन और नशे के एतबार से सबसे बुरी चीज़ शराब ही समझी जाती है, जिसको छोड़ा नहीं जाता। लेकिन क्या खूबसूरत तरीके से दिल बदले कि जिस दिन आखिरी हतमी हुक्म हो गया, ऐसे शराब के मटके फूटे कि मदीना की गलियों में शराब बहने लगी, हाथों में पकड़े मुंह को लगे हुए जाम छूटे। किसी ने क्यों करा नहीं किया। इसके बरक्स आपको शायद पता है कि नहीं, 19वीं सेंचुरी के बिल्कुल आगाज में अमेरिका में एक कंपेन चली थी, हकूमत ने शराब के नुकसान को नज़र में रखते हुए अमेरिका में बाय लॉ शराब पे पाबंदी लगा दी थी, नहीं मानी लोगों ने। चंद साल बाद पाबंदी वापस ले ली। क्यों? कि किताबों में लिखा दिलों पे नहीं लिखा जाता। असल बात भी यही है, असल में आज इसमें बात भी यही है। हम किताबों से तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे दिल पे नहीं लिखा जाता। तो यहाँ हर फैसला दिल पे लो। जब अल्लाह को दिल से मान लिया तो उसके हुक्मों को मानने में क्या तकलीफ है? और जब रसूल के नाम पे गुन गाते हो तो फिर तुम्हें उसकी बात को मानने में क्या रुकावट है? आज हमारे मुसलमानों का यही मसला है। हमारा कॉल तो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हमारा फेल कई मुख्तलिफ कौमों के मजाहब से मिल के बना हुआ एक चू चू का मुरब्बा। ऐसे मुसलमानों पे फिर अल्लाह की मदद तो कम ही आती दिखी। वो तो मदद तब आती है जब वो फिजाए बदर पैदा की जाती है, फिर फरिश्ते भी उतरते हैं फिजाओं से। तो आज के मुसलमान के लिए ये फिर एक रिमाइंडर है, लोगों से डरने से ज्यादा अल्लाह से डरो। तुम सोचो लोग तुम पे क्यों गलत कानून नाफिज करते हैं, वो क्यों तुम्हें फोर्स कर रहे हैं खिलाफे तबई चीजों के जायज करार देने पे? क्योंकि तुमने अल्लाह और उसके रसूल की बड़ाई को छोड़े हुए। यही पैगाम आपको इस आयत में मिल रहा है कि जब मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल से डरते, उससे प्यार करते, उसके हुक्मों पे अमल करते, अल्लाह गैरों के दिलों में मुसलमानों का रूब और मोहब्बत डाल देता है। फिर लोग मरूब भी होते हैं और प्यार भी करते हैं, और वो मुसलमानों को फॉलो करते हैं, उनको रोल मॉडल बनाते हैं, जैसा कि शुरू के 1000 साल तक हुआ। लेकिन जब मुसलमान मरूब, दबे हुए, पिसे हुए, कॉम्प्रोमाइजिंग, पहले से हारे हुए जवारी की तरह घरों से निकले, तो ये सोचते हैं कि अब हमें तो हर गलत बात माननी है, तो फिर आप देख लीजिए वही होता है जो आज दुनिया में हो रहा है। तो ज़रूरत क्या है? अपने आप को अल्लाह के हुक्मों से जोड़ें। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, तिरमिजी और इब्ने माजा की रिवायत है, हज़रत माज़ बिन जबल जो बहुत ही फकीह सहाबी थे, अल्लाह के नबी ने इनको यमन का हाकिम अदालत बनाया, यानी कह लीजिए जज बन के गए वहाँ के कामों की। इनको जिम्मेदारी जो दी गई कि वहाँ जाके अदालती फैसले कीजिए। जाने लगे तो आपने रोक के पूछा, ये तो बताओ यानी तुम अब फैसले करोगे, तुम किस चीज़ के मुताबिक फैसले करोगे? तो जवाब क्या था? अल्लाह की किताब के मुताबिक, यानी कुरान से दलील मांगूंगा। कहा अच्छा, अगर किसी फैसले के बारे में हिदायतनामा या कोई क्लियर गाइडेंस कुरान से ना मिली तो क्या करोगे? तो कहा उसके बाद मैं सुन्नत रसूल की तरफ आऊंगा, अल्लाह के नबी की तरफ आऊंगा। आपने फरमाया अगर इसमें से भी कुछ ना मिले, हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ ऐसे मसाइल सामने आए जो आज के दौर में नहीं, फिर क्या करोगे? तो कहा फिर अपने इस इल्म की बुनियाद पे इज्तिहाद करूंगा। उस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पे हाथ रख के फरमाया, शुक्र है उस जात का जिसने अपने रसूल के नुमाइंदे को वो तरीका इख्तियार करने की तौफीक दी जो इसके रसूल को पसंद है। बात समझ गए? पहले कह लीजिए किताबुल्ला, फिर सुन्नत रसूल, उसके बाद फिर इज्तिहाद, और इज्तिहाद किस चीज पे? कुरान और सुन्नत पे बेस्ड। और कह लीजिए कि एक मुस्लिम जज और गैर मुस्लिम का क्राइटेरियन है ये आयत कि ला तुकद्दिमु बैना यदी अल्लाह व रसूली। कानून साजी का पूरा हक अगर अदालतों में अल्लाह और उसके रसूल को है, तो शादियों में किसको है? मंगनियों में किसको है? बच्चों की तरबियत में किसको है? हमने इस आयत को अदालतों में डाल दिया, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के आगे ना चलो, तो यह निकाह मिन सुन्नती तो है, तो ये किसकी सुन्नतों पे शादियां कर रहे हो? फिर आप देखिए यह आयत अब मुसलमानों के पूरे लाइफस्टाइल पे तनकीद करती है। ये शादी में मेहंदी किसकी सुन्नत है? ये उपटन किसकी सुन्नत है? ये बेपर्दगी किसकी सुन्नत है? ये मिक्सिंग क्या है? ये सेग्रीगेशन क्यों चुभती है? क्योंकि तुम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों से आगे चले गए हो। और एक और जुमला जिस पे भी कुछ बात नहीं की वो है, अगर ये एक आयत अमल में रहे सारी बिदतों ज़िबा हो जाती हैं। बिदतों का सर कलम करने वाली सिर्फ ये एक आयत है, ला तुकद्दिमु बैना यदी अल्लाह व रसूली। क्योंकि बिदत तो होती ही एक स्टेप आगे है, अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं कहा, बाद वाले लोगों ने सवाब समझकर, नेकी समझकर, क्या हरज है क्या हरज है कह के वो काम शुरू कर दिया और दीन में इतने इजाफे कर दिए जैसे फ्रूट बड़ा खूबसूरत साफ सुथरा उस पर नमक मर्च और चाट मसाले डाल के हम खाते हैं कि टेस्ट आता है। इस तरह लोगों ने साफ सुथरे प्योर ऑर्गेनिक रिलीजन के अंदर नमक मर्च मसाले डाले बिद्दतों के, और किसी ने पूछा तो कहते हैं हरज क्या है, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा कहा नहीं, मना भी तो नहीं किया, किया नहीं तो रोका भी तो नहीं। तो मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, आपको एक रेसिपी मिलती है केक बनाने की, 6 अंडे, दो कप दूध और मैदा और दो चार चीज़ें और लिखी हुई हैं। और एक तरीका भी है, इसको घोलिए, इसको मिलाइए, इसके बाद आखिर में ओवन में रखिए 45 डिग्री पे इतने मिनट में करके इसको बेक कर दीजिए। बना लेंगे तो केक बहुत अच्छा बनेगा। अगर बिल्कुल सेम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा वैसा ही बनेगा, टेस्ट आ जाएगा। कोई क्या करे, 6 की बजाय 12 अंडे डाल दूँ, भाई आपने क्या किया? कहते हैं क्या हर्ज है। आप कहते हैं देखिए रेसिपी में लिखा है 6 अंडे, तो कहते हैं 12 अंडे डालने से मना भी तो नहीं किया। आप मुझे बताइए वो केक बनेगा? और कोई उसमें 2 चम्मच मिर्चों के डाल दे, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं कहाँ है रेसिपी में? कहते हैं मना भी तो नहीं किया, और हर्ज क्या है? चले स्वीट एंड सॉर और स्पाइसी केक बन जाएगा, वो केक वो नहीं रहेगा। जैसे एक छोटी सी रेसिपी को आप चेंज करें तो टेस्ट बदल जाता है। आज पूरे का पूरा दिन ही बदला हुआ है। नया बंदा बाहर से आके खड़ा होकर कहता है किधर जाऊं, कौन सा दीन अख्तियार करूं, शिया दीन, सुन्नी दीन, वहाबी दीन, मुस्लिम दीन, फला दीन, फला दीन, वो हर एक अपनी तरफ खेत, और जिधर चले जाए लोग कहते हैं शुक्र है बच के आ गए हो, सारे ही काफर हैं। थोड़े दिन उनके साथ रहा, देखा गड़बड़े बड़ी हैं, उधर से हटा दूसरे में गया, कहते हैं वो तो खराब थे, तुम हमारे पास आए हो बच गए। जब अंदर उनकी ख्यानतें और उनकी मादा प्रस्तियां देखी तो फिर क्या होगा। अभी ये 2-3 दिन पहले हम यूके में थे, तो अल्लाह के हुक्म से मेरे हस्बैंड को शौक है और हम सब मुसलमानों का फर्ज भी है, तो ये वहां फारिग वक्त में और भी लोगों की तरह वहां दावा करते हैं खड़े होके, कैसी मुस्लिम्स के, और वहां बिल्कुल लीगल है, नॉन मुस्लिम भी दे रहे होते हैं, हम मुस्लिम भी देते हैं। तो एक शख्स के साथ ये खड़े थे आखिरी दिन, बिल्कुल हमारे आने का टाइम था और हम इनको गाड़ी में बिठाने की कोशिश में थे, और वो आदमी छोड़ नहीं रहा था, इतना ज्यादा वो कनिंग था, कीन था, बूढ़ा सा था शख्स, यानी लेट 60s में होगा शायद। कहता है आई वॉज सर्चिंग फॉर ट्रुथ, सच के लिए मैं मतलाशी था। फिर उसने अपनी जो कहानियां सुनाई, सारी बात का खुलासा, कहता है कि पहले मैं कुफर पे था, फिर मैं बुद्धा बन गया, बट बुद्धा में जाकर मैंने कुछ नाम मैंने ले दिए, वरना मैं लेती नहीं, लेकिन चलिए उसकी बुराई नहीं बताती, उसने कोई उसमें खराबी देखी, वहां से निकला इधर, वो एक रोलिंग स्टोन बना बैठा है, और आज कहता है इट मेक सेंस, जो बातें तुम कह रहे हो ना इट मेक सेंस, बात बन रही है। आप याद रखिएगा हक और सच में कशिश होती है, जब आप उसमें मुलम्मा साजियां कर देते हैं तो बड़ी गड़बड़े हो जाती हैं। और इस तरह बहुत सारी हमारे पास ऐसी कहानियां मौजूद हैं। तो याद रखिए जितना दीन अल्लाह के नबी ने कह दिया, अल्लाह ने बता दिया, दैट्स दीन। आप नमाज अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे सल्लु कमा रही तुमू नहीं उसली, कोई इसी की बजाय खड़ा होकर वहां एक्सरसाइज के नंग पे कुछ और करे, कहे मैं अपने जोम में जोहर की नमाज पढ़ रहा हूं, वो नमाज नहीं होगी। एक और मिसाल देकर आगे चलती हूँ। बस लोग नेकियां करते हैं और फिर कहते हैं क्या फर्क क्या पड़ेगा जी, और फिर ढंके की चोट पे क्या कहते हैं, क़यामत के दिन इसका अजर भी लेना। आप देखिए ना हमारे यहाँ कई मरोवजात विदात हैं, आप खुद देखें, जिसका न कुरान न सुन्नत न सहाबा न ताबईन न तबा ताबईन, किसी के दौर में नाम भी नहीं था। बहुत सारे हैं, सिर्फ मिसाल के लिए रजब के कुंडे, सहाबा के नाम के साथ तसव्वुर ही नहीं है, शबरात की रात को जागना, कुरान खानी, और इस तरह के चंद इश्यूज, पेट इश्यूज हैं, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रही हूँ। और कभी अल्लाह के नबी ने अपनी विलादत के ऐसे जश्न नहीं मनाए जैसे आज मनाए जाते हैं। जब पूछा जाए तो कहते हैं जी लो, क्या अल्लाह हमारी ये निकियाँ ज़ाया करेगा? मिसाल देती हूँ, एक घर का मर्द है, उसने अपने किसी ताल्लुकदार से बात करके एक ड्राइवर को हायर किया और कहा कि तुम्हें 15,000 रुपये महीने के दूंगा, तुम मंडे टू फ्राइडे आके गाड़ी चलाओ, वीकेंड तुम्हारे ऑफ हैं, और तुम्हें 15,000 तनख्वाह मिल जाएगी। वो कहेगा ठीक है। अब वो आता रहा, एक हफ्ता आया, पूरा हफ्ता आया, ठीक है। उसके बाद एक दिन उस मर्द की बीवी उसको कहती है कि अब तुम इतवार को भी आया करो, और इतवार को भी आओगे ना तो साहब तुम्हें 10,000 एक्स्ट्रा देंगे। वो तो खुशी से आएगा कि 15 की बजाय 25 मिलेगा। वो पूरा महीना इतवारों को भी आता रहा। अब क्या हुआ, जब महीना खत्म हुआ तो वो साहब ने तो उसके हाथ में रखे 15,000, तो कहते जी 10,000 और दीजिए। कहते कौन से? वो 10,000 जो मैं इतवारों को आया हूँ। क्यों, किसने कहा? आपकी बेगम ने कहा था कि आओगे तो 10,000 में। कहेगा मैंने तो नहीं कहा। देगा वो आदमी उसको 25,000? ये तो एक इंसान का मामला है। अल्लाह उस कामों की जजा कैसे दे जिसका उसने कहा ही नहीं कि मैं दूंगा। तो याद रखिए ला तुकद्दिमु बैना यदी अल्लाह, सिर्फ एक आयत, कम से कम 4 घंटे हम इस पे बात कर सकते हैं, पूरा दीन इसके अंदर आता है। तो आखिरी बातें, शादियों में अल्लाह के और रसूल के तरीकों से आगे ना जाओ। निकाह के बोल के हैं 4 जुमले हैं इजाबो कबूल के, और बहुत सारे लोग कहते हैं लड़का लड़की का निकाह होता है, असल में लड़के और लड़की के वली के बीच में माहदा हो रहा होता है। इजाबो कबूल की 4 चीज़ें हैं, आप इसको निकाल दें और शादी की बाकी रस्में कर ले रहे हैं, वो शादी है कि जिना, और आप इसमें और चार छह चीजें डाल लें, बदल दें। जैसे हम निकाह के वो चार बोल नहीं बदल पाते, तो शादी के बाकी तौर तरीके बदल के फिर खुश हैं। आज हमारी औलादों की तरबियतों के किबले क्या हैं? आज हमारे बच्चों को देखकर खुशबू आती है अल्लाह और उसके रसूल की। आज हमारी तिजारत, हमारी मईशत, हमारे घर, हमारे रहन सहन, हर जगह तो हमने इफ्स एंड बट्स रखे हुए हैं एक्चुअली एक्चुअली दरअसल। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपने और अपने रसूल की बात से जोड़ दे, क्योंकि ये उम्मत एक अलग उम्मत है। वो कहते हैं कि तू क्यास नकवा में मगरिब से ना कर के खास है तरकीब में कौम हाशमी। आपका मेरा खमीर ही और है, हम हैं ही और। ये तो अलग बात है कि आज हमें खुद नहीं पता हम क्या है, तभी तो हम आज एक बोनलेस मीट की तरह हर एक के सामने पेश कर दिए जाते हैं। कूट कूट के हमें जैसा चाहते हो बना लो, जिधर जाते हैं वैसे बन जाते हैं।